अब बंदा क्या करता, नहीं थोड़ा सीख ले के क्या करेंगे, इसको मियां बीवी में जुदाई डाल देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे, हराम हराम, अल्लाह ताला इसको हराम करार दिए। ये लोग क्या करते थे, नऊज़ुबिल्लाह, बनी इसराइल के लोग करे ये काम कि जादू करते थे, मियां बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते और इससे जो है ना मतलब फितने फसाद करते थे। तो अल्लाह ताला बता रही कि फमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये बात भी याद रखिए, जादू का असर उसका जो है ना मतलब वो जब ही होता जब अल्लाह का हुक्म हो। अल्लाह का हुक्म नहीं होता, अल्लाह की मर्जी नहीं होती, तो कोई जादू भी करा लो, कुछ भी करा लो, असर नहीं करता। तो बहरहाल अल्लाह ताला बता रही कि अल्लाह के हुक्म से ही होती थी हर चीज। वो लोग समझते थे हम लोग शैतानों को इस्तेमाल करके जो बोले वो कर ले रहे, नहीं बल्कि वो किसी का नफा व नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह नहीं पहुंचाया किसी। और अल्लाह कब पहुंचाता बहनों, जब बंदा लापरवाही करता, असकार नहीं पढ़ता सुबह शाम। किसी के ऊपर जादू का असर कब होता, जब वो बंदा अल्लाह का असकार नहीं करता, नमाजों की पाबंदी नहीं करता, हलाल हराम की तमीज नहीं करता, म्यूजिक का सुनना, ये सुनना, वो सुनना, फला ये नहीं मतलब ये गंदगी भी सुन रहा है, फिर कुरान भी पढ़ रहा, फिर क्या समझ रहा है कि नहीं, मतलब कुरान पढ़ लिया ना मैं हो जाता, मैं बच जाता हूँ, नहीं, फिर गंदगी भी सुनाता ना, उस वक्त शयातिन उस पर मुसल्लत हो जाते हैं। वो जादू के असरात उस वक्त होते हैं बंदे पर जब यानी पक्का असर अंदर आ चले जाता शैतानों का। कौन सा असर, गंदगी का, जादू का। तो ये जादू, ये गंदगी जो है वो हराम है, और वो असर कब होता है, जब बंदा हराम काम करता है, नमाज को नमाज की पाबंदी नहीं करता, अस्कार की पाबंदी नहीं करता, अल्लाह की तरफ नहीं जुड़ता, ईमान को मजबूत नहीं करता, तो ये जादू असर करता है। बहरहाल ये जादू हराम है, वो बनी इसराइल की कौम करी थी, तो अल्लाह ताला सख्त उसके ऊपर यानी बोले कि तुम्हारा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। बल्कि क्या बोले, जो भी तुम कर रहे हो ना, लमिन अश्तरा हो माल हो फिल आखिर, वो एक भी हिस्सा तुम्हारा आखिरत में नहीं रहेगा। यानी अल्लाह ताला तमाम अमाल जो ईमान लाए थे, कुछ जो भी अमल कर रहे थे ना, कभी नमाज पढ़ लेते, कभी ये कर रहे थे, कभी वो कर रहे थे, कभी अल्लाह की बात भी सुने भी थे ना, तो वो पूरे के पूरे सील्ड करके अल्लाह फेंक देगा, वो अमाल भी पूरे बर्बाद हो जाएंगे अगर बंदा जादू करता है या फिर जादू का जवाब जादू से देता है। नहीं करना है, अगर किसी पे हो भी गया जादू तो उसका एक अलग चैप्टर है। आप इंशाल्लाह कभी पर्सनल मैसेज करिए, वो पूरा समझाऊंगी मैं कि कैसे कैसे क्या मतलब बचा जाता है जादू के असर से। इंशाल्लाह हम रमजान के बाद यानी दरस कुरान के बाद जो है ना इंशाल्लाह वो टॉपिक्स भी लेंगे, इंशाल्लाह जादू कैसे असर करता है, उससे कैसे महफूज रहना है। तो बहरहाल अल्लाह ताला बनी इसराइल की कौम को यानी कई चीजें उनको बताए कि जो है ना मतलब कैसे कैसे वो लोग कुफर करे, और जो है ना मतलब सवालात कसरत से नहीं करना बहनों, कैसे सवालात जो इंसान के यानी अमल से ताल्लुक नहीं रखते। बनी इसराइल की एक सिफत ये भी थी कि वो लोग कसरत से सवालात करते थे। अल्लाह ताला बोले अम तुरीदुन अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा, 108 आयत में अल्लाह ताला बताए सूरह बकरा की यानी कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो उसमें ये बताए कि तुम ऐसे सवालात मत करो जैसा मूसा के कौम करी थी। यानी ऐसे सवालात जिससे कि आपके ईमान का कोई ताल्लुक नहीं है। बस लोग पूछते आदम अलैहि सलाम कितने हज करे थे बाजी, कई को भाई आपको कितने भी करे थे होंगे, उससे आपके ईमान का क्या ताल्लुक है? आदम अलैहि सलाम कितने हज करे थे, वो फला क्या हुआ था, पिछले अंबिया की जो जिंदगी थी उससे आपको तख्वा परहेजगारी वो लेना है, आप उनकी शरीयत को नहीं कुरेदते बैठना है। उनको फला हुआ था मूसा अलैहि सलाम के दौर में जो है ना मतलब वो ऐसा हुआ था, तो उससे हमको क्या करना है? अरे भाई सुभान अल्लाह, हमको सिर्फ नसीहत हासिल करना है, उनके कौम की बुराइयों से बचना है, उनकी अच्छाइयों को लेना है बस। अब उसमें उन्होंने कितने हज करे थे, उतने हम भी कर सकते क्या, उन्होंने 1000 करे थे कहते ना, 999 करे, अरे सुभान अल्लाह, आप जो सवाल आपके ईमान से कोई ताल्लुक नहीं रखता वो सवालात नहीं करना है। बहरहाल बहरहाल अल्लाह सुभान व तआला रोके बेजा सवालात करने से, और अल्लाह ताला बताए कि जो है ना तुम नमाज को कायम करो, जकात दो। बार 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 ये चीजें आई हैं बहनों कुरान में कि नमाज जकात का बार बार हुक्म आया है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जो भी यानी मतलब के लोगों को माफ करो, और जो है ना मतलब जो भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसकी पाबंदी करो, और यहूद नसारा क्या बोलते थे, जो भी क्या बोलते वखालुलन यदखुलल जन्ना इल्ला मन काना हुदन व नसारा, कोई भी दाखिल नहीं हो सकते जन्नत में, सिर्फ यहूद या नसारा ही हो सकते। तो अल्लाह ताला बोले ये उनकी ख्वाहिशात है जो खाली मतलब वो लोगों ने अपनी यानी बना लिया, अपने आप को बना लिया कि हाँ भाई हमारे हम ही हैं जो मतलब जन्नत में जाने वाले हैं, तो ऐसे खाली क्या कहते हैं जहनी पलाऊ बना के मत रखो, ऐसा 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 ख्याली पलाऊ अपने अंदर नहीं बना लो, बल्कि अल्लाह ताला बता रही है कुलहातु बुरहान, दलील दियो इस बात की कि तुम ही जन्नती हो, कुलहातु बुरहान को मिन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील दो ना अल्लाह की, हम ही जन्नती हैं उसकी दलील दो, भला क्यों नहीं, मन असलम, जो भी अल्लाह के लिए झुक जाता है और वो एहसान वाला है, यानी मतलब ये कि जो अल्लाह के लिए झुक जाता है और वो नेकी पर नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसको जरूर अजर देंगे। अब वो झुक जाने वाले कौन थे जो हम आगे के चैप्टर में देखते हैं कि सुभान अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, लास्ट चैप्टर है ये कि अपने ये आज के दर्स का लास्ट चैप्टर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी जब उनको यानी वो ऐसे झुक गए थे ना अल्लाह के पास सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला बता रही कि जब कभी भी अल्लाह ताला ने उनको आजमाया तो उन्होंने अपनी इस आजमाइश को पूरा कर दिखाया, तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि उनको इमाम बना दिया, ईद तला जब भी आजमाया, तो ये जब भी आजमाया क्या है, बहुत सारे आजमाइशों में आगे आगे पढ़ेंगे आपके कैसी कैसी आजमाइश इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हुई और कैसे कैसे अल्लाह ताला ने उनको आजमाया और वो कैसे कामयाब हुए उस आजमाइश में, आगे आगे पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया था, तो आजमाया गया, उन्होंने पूरा किया आजमाइश को, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, क्या क्या कहा कि मैं तुमको इमाम बनाऊंगा। अब देखिए बहनों बंदों को ना यानी मतलब ये कि कोई भी नेमत मिलती है तो फौरी वो क्या करता है, अपनी औलाद के बारे में पूछता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी पूछा अल्लाह फिर मेरी औलाद को, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा वादा जालिमों से नहीं है, अल्लाहु अकबर, मेरा वादा जालिमों से नहीं है, यानी जो जुल्म करेगा अगरचे कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही क्यों ना हो, अगर वो नाफरमानी करेगा तो अल्लाह ताला बताए कि मैं उसको नहीं दूंगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह का घर बनाओ इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके घर बनाए थे अल्लाह ताला का, मुकाम इब्राहिम आज भी वो मौजूद है, जिसको अल्लाह ने कहा कि तुम उसको मुसल्ला बना लो, हर एक जो उमरा और हज के लिए जाते हैं उसको मुसल्ला बना लेते हैं, तो सुबहान अल्लाह वो यानी मुसल्ला बनाते हैं नहीं ना, वहां पे नमाज पढ़ने का हुक्म है, तो अल्लाह ताला ने हुक्म किया था इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कि अल्लाह के घर को पाक रखें रुकू करने वालों के लिए, इतिकाफ करने वालों के लिए। सुबहान अल्लाह, फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि इस शहर को अमन की जगह, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना, और वाकई में अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि यहाँ पर यहाँ के रहने वालों को फलों की रोजियां दे, तो आप देखते हैं बहनों कि वहां पर मक्के में हर किस्म का फल मिलता अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि वहां वो पैदा नहीं होता, लेकिन ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ मैं सबको दूंगा, नाफरमानियां भी करे, यानी मक्के में हर कोई पूरा पूरा मक्का फरमानबरदार नहीं है ना भाई, नाफरमानी करने वाले भी थे उस वक्त भी थे आज भी हैं, तो अल्लाह ताला बताए कि चंद दिन फायदा मैं उनको भी उठाने दूंगा, लेकिन आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये कंटिन्यू दुआ की उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वो उठा रहे थे ना काबे की दीवार, उस वक्त जो है ना दो दीवार उठाते वक्त दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला तो हमारी नेकी को कबूल फरमा, यानी उतने बड़े बड़े काम करके भी पैगंबर जो है ना बार बार फिर अल्लाह ताला से रुजू होके कहते थे बहनों कि अल्लाह हमारी नेकी को कबूल फरमा ले, हम कोई हिमाकत नहीं करें नेकियां करके जाओ नेकियां कर ले, नहीं दुआ करे अल्लाह कबूल, रबना तकबल मिन्ना, अल्लाह हमसे कबूल कर ले, तो कबूल करने की दुआ करे वो लोग, और बोले कि ऐ हमारे रब हम दोनों को अपना फरमाबरदार बना ले, हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपनी फरमाबरदार बना दे, और हमारे हमें हमारे तेरी इबादत के तरीके सिखा दे। अल्लाह अकबर, ये दुआएं करें बहनों बार बार, रब्बना वजअल मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमा लका व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम, आमीन या रब। और ये दुआ करें कि अल्लाह भेज इनमें से ऐसा रसूल जो उन्हीं में से उनको उनकी आयतें यानी उन्हीं में से एक रसूल भेज जो उनके सामने तेरी आयतें तिलावत करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, सुभान अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो दुआ के नतीजे में जो मांगी थी ना तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। बहरहाल अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इब्राहिम को चुन लिया था, मैंने इब्राहिम को चुन लिया, और जो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से बेरहमती बरतता है तो वो अहमक है, बल अहमक, بیوقوف ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چلتا, یعنی ان کا جو طریقہ تھا جو اکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑے تھے. اور بہنوں, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل یعقوب علیہ السلام سب کی جو ہے نا, جو اپنے بچوں کے لیے جو دعا کی, جو بچوں کے لیے جو ہدایت تھی, وصیت کی, وہ بھی ایک لاسٹ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ یا بنیا, کیا کہا اپنے بچوں کو, وصیت کی, ان اللہ اصطفیٰ لکم, اللہ نے تم کو چن لیا ہے تو یہ دین تمہارے لیے اللہ نے چن لیا, ان اللہ اصطفیٰ لکم دینا فلا تموتن الا وانتم مسلمون, سورہ بقرہ کی 132 آیت. یعنی تمہیں موت بھی نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. یعنی یہ وصیت اپنے بچوں کو کرنا ہے ہمیں, جیسے انبیاء نے وصیت کی تھی کہ ہمیشہ تم بچوں اللہ کے دین پر پابند رہو, تمہیں موت بھی نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جو اس ابراہیم علیہ السلام تھے, اس کے بعد یعقوب علیہ السلام تھے, اسحاق علیہ السلام تھے, اسماعیل علیہ السلام تھے, یہ جتنے لوگ گزرے, یہ ایک تلک امت, ایک امت ہیں یہ جو گزری, خط خلط لہا ماں کا سبق, ان کے لیے ان کی کمائی تھی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے, تم اپنا دیکھو تم کو کیا کرنا ہے. یہود و نصارہ تو بولتے تھے نا بھائی ہم ملت ابراہیم سے, ملت ابراہیم سے تھے تو پھر ملت ابراہیم والا کام کرو, جیسا وہ اکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرے تھے. اور کیسا انہوں نے اللہ کا رنگ اختیار کیا تھا, صبغت اللہ, اللہ کا رنگ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے نا ہم بھی مثال دیتے نہیں, انہوں تو اتنے ان کے جیسے ہو گئے نا, رنگ میں رنگ مل گیا ان کا, تو سبحان اللہ. ہم تو مثالیں دیتے ہیں لوگوں کو کہ تم رنگ میں رنگ ملاؤ, یعنی مطلب ہے کہ ان کے جیسے ہو گئے, انہوں ان کے رنگ میں رنگ رنگ گئے, تو اللہ کو کون سا رنگ مطلوب ہے؟ اللہ کا رنگ, صبغت اللہ, ومن احسن من اللہ صبغا, اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے بہن؟ آئیے ہم اللہ کے حضور وعدہ کریں گے کہ ہم اللہ کا رنگ اختیار کریں گے اور حجت نہیں کریں جیسے بنی اسرائیل نے کہا حجت کی تھی. کیسی حجت؟ اللہ کے رب ہونے میں حجت نہیں, بلکہ ہم حجتیں نہیں کریں گے, بلکہ جو حکم ہم کو دیا گیا اللہ کا اس کو پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی مثال دے کر ہم کو بتاتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا, بلکہ اللہ کا رنگ اختیار کرنا, اور بڑی بڑا ہی بہترین اللہ کا رنگ ہے.
معافی چاہتی ہوں, میں اور ایک چیپٹر رہ گیا,
تھوڑا سا ایک 5 منٹ میں اس کو ختم کریں گے.
نسرین,
نوشین ختم کریں گے یا پھر جو ہے نا مطلب آگے کل دوسرا پارا؟
ٹھیک ہے باجی, لوگ کیا بول رہے پتا نہیں, چیٹ باکس میں اگر کوئی لکھنا چاہ رہے ہیں تو لکھ سکتے.
اگر ایک پاؤ پارا میں اور
اگر تھوڑا وقت دے سکتے تو ٹھیک ہے, ورنہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ, وقت تو ہو گیا نا.
ہاں بتائیے, اگر ہیں تو کر دیں گے پاؤ پارا, یا نہیں تو پھر کل لے لیں گے اس کو, کیونکہ آج چونکہ پہلا تھا, پہلا دن تھا, کچھ انسٹرکشنز بھی دینے تھے اور تھوڑا سا سورۃ الفاتحہ کا بھی تھا, تو اسی لیے ڈیڑھ پارا نہیں ہو پایا.
5-6 لوگ لکھ رہے ہیں, تھوڑا سا کہ کنٹینیو کر سکتے تھوڑا وقت باجی, 5-10 منٹ کر لیتے ہیں.
اچھا چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ, چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو سیکنڈ پارا شروع ہو رہا ہے بہنوں, سیقول السفہاء من الناس وما وللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. تو یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ یہاں پر قبلے کے تعلق سے بتائے کہ انخری بیوقوف یہ کہیں گے کہ کس نے انہیں قبلے سے پلٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دو مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. ہوا یہ تھا بہنوں کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بتایا نا آپ کو, ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام مل کے کعبہ بنائے تھے, اسی طرف ہمارا رخ تھا, اسی طرف سب عبادتیں کرتے تھے. بیچ میں تھوڑے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے تھے, بیت المقدس جو ہے, جو ہمارا مسجد اقصا ہے, اس طرف ہمارا قبلہ تھوڑے دن کے لیے پھیر دیے تھے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو مطلب دل میں دعا کر لیتے اللہ تعالیٰ قبلے کو دوبارہ پھیر دے, جو کعبہ تھا قبلہ پھر سے اس کو بنا دے, تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا. سبحان اللہ, دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, کیسے کیسے نیک اور فرما بردار بندے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کا خالی نظروں کا اٹھنا آسمان کی طرف اور دل میں بار بار یہ خواہش کا اٹھنا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے, بیت المقدس سے دوبارہ کعبے کی طرف, مکے کی طرف, کعبۃ اللہ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور قبلے کو پلٹا دیا. پلٹاتے اب یہود و نصارہ کو لگی, یہاں پہ بتائی نا میں پچھلے یہود و نصارہ کے بارے میں چلتے آ رہا, तो यहूद नसारा को बहुत लगा, बोले अरे क्या हो गया इन लोगों को, बेवकूफा है क्या, कहीं को पलट गए कहीं को पलट गए। अल्लाह आजमाना चाह रहा था उनको, अल्लाह उनको क़िबले की तरफ से आजमा रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने ईमान को जाया कर दिया एक बात के ऊपर, क्या नहीं कहीं को पलटे भाई क़िबला, नहीं हम नहीं पलटते, नऊज़ बिल्ला, कई यहूद नसारा क्या करे उस क़िबले की तरफ नहीं पलटे। तो अल्लाह ताला बताए कि अल्लाह उनके ईमान को आजमा रहा था, अल्लाह उनके ईमान को आजमा रहा था। अल्लाह ताला बता रही कि ये लोग अब, यानी मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए, बोले कि अरे भाई ये रब का हुक्म है इस तरफ पलटो, तो बोले नहीं हम नहीं पलटते, क्या हो गया तुम्हारा, क्यों पलटे तुम, अल्लाह का हुक्म है पलटना।